नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जब चले शहर की ओर के हमारे आज के एपिसोड में। मैं हूं अंजलि जोशी।
और मैं हूं नरेन तिवारी।
नरेन, एक बात बताओ, पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
जाहिर सी बात है, प्यार।
हाँ, प्यार तो जरूरी है नरेन, पर उससे भी ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है?
भाई, उससे ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ विश्वास।
सही कहा तुमने नरेन। चलो जानते हैं हमारे श्रोताओं से, क्या उन्हें भी लगता है कि शादीशुदा दंपति की खुशियों की नींव में विश्वास का होना जरूरी है, या फिर एक दूसरे के बीच पूरी ईमानदारी के कुछ खतरे भी होते हैं?
अब इन खतरों से तुम्हारा क्या मतलब है?
मतलब ये कि अगर दोनों में से किसी से भी कोई गलती हो गई है और वो अपने साथी के सामने उस गलती को स्वीकार कर लेता है, तो कहीं ये ईमानदारी उनके रिश्ते पर गलत असर तो नहीं डालती?
भाई, अगर पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर भी आज के एपिसोड में हम इस बारे में अपने श्रोताओं से जरूर पूछेंगे।
पर उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर इक्विल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, अगर आप हमसे प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 43वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना मुंबई में कविता के पिता राजेश से वापस गांव जाने की बात कहते हैं। राजेश उनसे कुछ दिन और मुंबई में ही रुकने का अनुरोध करता है। उधर चंदर सुषमा के घर फोन कर उसे अपना नया फोन नंबर देता है, जिसे वो मधु को देने के लिए कहता है। सुषमा मधु तक वो नंबर पहुंचा देती है और उसे चंदर को फोन करने के लिए कहती है। उधर छुटकी उमेश के गांव में होने की बात अपनी माँ को बताती है और कहती है कि उमेश बहुत बीमार है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
यार गज्जू, कितनी अजीब बात है, हिंदी के एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी में कई शब्द हैं।
हाँ यार, अब देखना, लड़का हो तो उसके लिए ही बोलो और लड़की हो तो उसके लिए शी बोलो।
हाँ, और तो और इट माने भी ये होता है और दिस माने भी ये होता है।
अरे यार, इससे तो अपनी हिंदी बढ़िया है, कोई झंझट ही नहीं है।
सही कह रहा है यार तू। अरे गज्जू देख, गुप्त रोगी मिले समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।
तुझी का कोई बीमारी हो गई है जो इस बोर्ड को इतने ध्यान से पढ़ रहा है?
यार गज्जू, सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ परेशानी महसूस कर रहा हूं।
मतलब?
मतलब यार, कभी कभी पेशाब के दौरान दर्द महसूस होता है और साथ ही कुछ अजीब से छाले भी हैं। यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
चंदर, कहीं ये सब जीबी रोड वाली गलती का नतीजा तो नहीं है?
लेकिन गज्जू, मैं उस दिन के बाद दोबारा कभी वहां नहीं गया और ना ही मैंने कभी किसी और के साथ।
अरे यार चंदर, ऐसी बीमारियां एक बार संपर्क में आने से भी फैल सकती हैं। रेडियो और टीवी पर बार बार तो दोहराते रहते हैं सावधानियों के बारे में, है? तूने कभी ध्यान नहीं दिया क्या?
वो तो है गज्जू, पर अब गलती हो गई।
अभी ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं, एड्स हो सकता है और जान भी जा सकती है।
गज्जू तू मुझे डरा मत यार।
मैं डरा नहीं रहा हूँ यार, सही कह रहा हूँ।
पर देखना, सामने बोर्ड पर तो लिखा है गुप्त रोगों का इलाज संभव है।
देख, ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे लगता है तुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
मैं कल ही जाता हूँ डॉक्टर के पास। यार बस थोड़ी सी झिझक थी, डॉक्टर भी क्या सोचेगा मेरे बारे में।
अब अगर इसी डर से इलाज नहीं कराया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा?
मैं जल्दी ही डॉक्टर के पास जाऊँगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कमरे पर चलते हैं। ये दर्शन भी ना जाने कौन सी नई मुसीबत खड़ी की होगी।
यार चंदर, सच कहूँ तो मेरा कमरे पर जाने का मन ही नहीं करता है। मुझे तो लगता है कि कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं ये दर्शन और उसके दोस्त, और किसी दिन हम भी लपेटे में आ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके ये हमारी शिपिंग वाली नौकरी पक्की हो और हम कुछ अलग रहने का इंतजाम करें बस।
तू सही कह रहा है गज्जू, दर्शन है तो मेरे गांव का, पर ये मुंबई शहर में आकर ना जाने उसे क्या हो गया है। रात को ये सब लड़के क्या क्या हरकतें करते हैं। पर वो कहते हैं ना यार, मजबूरी आदमी से क्या क्या नहीं कराती।
भैया ये मजबूरी हमारी खुद की बनाई हुई है, अच्छा भला दिल्ली में रह रहे थे।
यार गज्जू तू फिर शुरू हो गया।
अच्छा बाबा ठीक है, चल अब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा, पर मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है यार। हम दिल्ली में अच्छे थे यार चंदर।
जब 50,000 की नौकरी लग जाएगी ना, तब सब कुछ अपने आप ठीक लगने लगेगा।
हाँ ये भी है।
माँ, सब सामान रख लिया है ना?
हाँ बेटा, सब सामान रख लिया।
अच्छा माँ, ये कुछ कपड़े हैं छोटू और सुषमा के लिए।
अरे बेटी, इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत है?
अरे पिताजी, ये मैं नहीं, राजेश लेकर आए हैं।
पर बेटा,
रख लीजिए ना पिताजी, अब मेरा भी तो फर्ज है अपने परिवार के लिए।
ठीक है, वैसे बेटा यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला।
मन तो करता है और दो चार दिन रुक कर जाएं, पर उधर गांव में घर और खेतों को भी तो संभालना है।
राजेश बेटा, तुम दोनों जल्द ही गांव आ जाना, ताकि जल्द से जल्द तुम दोनों को हम अपना आशीर्वाद दे सकें।
जी जरूर पिताजी, मुझे लगता है हमें अब निकलना चाहिए, समय पर स्टेशन पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा।
हाँ बेटा, सुनती हो?
जी।
चलो निकलते हैं।
जी चलिए।
ये लो भैया तुम्हारा आटा। हाँ।
नमस्ते चाचा जी।
अरे नमस्ते नमस्ते, मधुर बावरी चंदन को फोन करने आई है क्या?
जी चाचा जी, बंबई का नंबर मिल जाएगा इस फोन से?
हाँ बेटी, कभी कभी मिल भी जाता है और कभी नहीं भी मिलता है, थोड़ी कोशिश करके देख ले, हाँ शायद तेरी किस्मत अच्छी हो तो अभी मिल जाएगा।
जी
हाँ भैया, तुम्हें क्या चाहिए?
नौ नौ दो जीरो पाँच छ छ सात।
हेलो हेलो, कौन?
हेलो हेलो जी, मैं मधु बोल रही हूँ।
मधु मधु, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था।
अरे थोड़ी देर पहले ही तो सुषमा ने आपका नंबर दिया, अच्छा किया जो आपने फोन ले लिया, कम से कम अब आपकी राजी खुशी तो मिलती रहेगी।
अच्छा सुनो मधु, तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली?
हाँ मिली, और आपसे शिकायत भी है।
देखो मधु, मुझे गलत मत समझना,
मुझे लगता था कि आप मुझे अपनी दोस्त समझते हैं, अपनी हर बात अपने सारे सुख दुख मुझसे बांटते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी।
देखो मधु, मधु मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं भटक गया, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने अपनी गलती मान ली यही बहुत है।
मधु सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है।
पर इतना भी बड़ा नहीं कि दोबारा ये सब बर्दाश्त कर पाऊँ।
तुम्हारी कसम मधु, कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा।
देखिए पति पत्नी के रिश्ते में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन विश्वास जरूर होना चाहिए, आगे से कभी मेरा विश्वास मत तोड़िएगा।
मुझे माफ कर दो मधु, जब इंसान की मत मारी जाती है तो उसे किसी की बात समझ नहीं आती, गजेंद्र ने बहुत समझाया था, यहाँ तक कल्पना ने भी।
बस अब इस कल्पना का नाम भी मत लो, और मुझसे वादा करो कि उन सब गलत जगहों पर भूल कर भी नहीं जाओगे। इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये मैं ही जानती हूँ।
अच्छा बस, वो जो एक मोटा सा आंसू तुम्हारी आंखों से लुढ़क कर तुम्हारे गाल पर आ गया है ना, उसे पोंछ दो।
आप भी बस।
मधु आज से हमारे बीच विश्वास का एक नया दौर शुरू होगा, ये मेरा वादा है।
वैसे आपने चिट्ठी लिखी, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, और कोई होता तो शायद ऐसा नहीं करता।
और गांव में सब ठीक है ना, माँ तुम्हें तंग तो नहीं करती? और हरिंदर भैजी कैसे हैं?
सब ठीक है, मेरा जूस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, पता है इस महीने मैंने 40 बोतलें तैयार की थी।
अच्छा?
हाँ। अच्छा सुनिए, वो जो आपके दोस्त है ना उमेश, वो गांव वापस आ गए हैं।
क्या उमेश गांव वापस आ गया है?
हाँ अभी कुछ 2 दिन हुए वापस आए हैं, काफी बीमार भी हैं, और यहाँ लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं।
कैसी बातें मधु?
यही कि उनको एड्स हो गया है।
क्या उमेश को एड्स हो गया है?
हाँ माँ तो उनसे मिलने भी जाने वाली थी, पर उनकी बीमारी का सुन के नहीं गई। देखिए मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है, कहीं आप।
मधु मुझ पर भरोसा रखो, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है।
आज तक आपके भरोसे के साथ ही तो जी रही हूँ। अच्छा खैर छोड़िए उसे, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में मोबाइल आ गया है।
क्या मोबाइल आ गया है?
हाँ हरिंदर भैजी लाए थे, आप जरा नंबर तो लिख लीजिए।
हाँ हाँ बोलो।
9 6 3 4
हाँ
5 5
पाँच पाँच
3 5
हाँ ठीक है मधु, मैं घर पर फोन करता रहूँगा।
और आपको पता है वो हमारी पड़ोस वाली सुषमा है ना, उसकी बहन कविता भी बम्बई में ही रहती है, आप उसका नंबर भी लिख लीजिए, जब कभी जरूरत हो तो उनसे बात कर लीजिएगा।
हाँ ठीक है, तो मुझे नंबर बता दो, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें फोन कर लूंगा।
ठीक है, तो लिखिए 9683425।
425, हाँ अब ठीक है।
अच्छा सुनिए, अब रखती हूँ, बिल बहुत आ गया है।
हाँ ठीक है।
तो दोस्तों अब जानते हैं अपने प्रवासी दोस्तों से कि उन्हें क्या लगता है कि क्या पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी का होना जरूरी है।
पति पत्नी के आपस में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी नहीं है तो गृहस्थी की जो गाड़ी है बहुत देर तक नहीं चल सकती, और उनके बच्चों में उनके संस्कार नहीं भर सकते। अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं तो इंसान को क्या गाड़ी कैसे चले, क्योंकि विश्वास ही जो है इस गृहस्थी का प्रतीक है।
हाँ, हर रिश्ते में सच्चाई का होना जरूरी है। जो सच्चाई का साथ नहीं देता और झूठ फरेबी धोखाधड़ी से रहता है वो आदमी हमेशा धोखे में रहता है और भविष्य में कभी सक्सेसफुल नहीं होता।
हर रिश्ते में सच्चाई का होना अहम है, क्योंकि हर किसी के साथ अगर हम सच्चाई से रहते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए।
हाँ जी, आपसी रिश्तों में सच्चाई का होना अहम है, क्योंकि सच्चाई रिश्तों की एक ऐसी नींव है जो कि हर कदम पर साथ देती है और कोई भी काम में बाधा रुकावट नहीं डालती है। इसलिए मैं कहूँगी कि सच्चाई के रिश्ते पर हर मनुष्य को चलना चाहिए, इसमें बहुत सुकून मिलता है।
तो दोस्तों, ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब, जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
अच्छा नरेन, रिश्तों में जहाँ वफादारी की कमी हो वहाँ यौन रोगों का खतरा रहता है, क्या तुम्हें यौन रोगों के बारे में पता है?
हाँ पता है ना, यौन संचरित संक्रमण यानी STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिन्हें कई लोग गुप्त रोग भी कहते हैं।
तो क्या यौन रोगों का इलाज मुमकिन है और क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं?
अंजलि, अब अगर मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगा तो हो सकता है कि शायद तुम मेरी बात का यकीन ही ना करो।
मतलब
भाई, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, जो STI यानी कि यौन संचरित संक्रमण के बारे में बताने वाले हैं वो खुद पेशे से एक डॉक्टर हैं। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि यौन संक्रमण की दशा में पति पत्नी को क्या उपचार करना चाहिए।
तो ठीक है, आइए सुनते हैं डॉक्टर AK गुप्ता से STI से जुड़ी कुछ खास जानकारी।
डॉक्टर गुप्ता, हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि यौन रोग, या जिसे हम STI कहते हैं, वो क्या है?
यौन रोग बहुत ही गंभीर रोग होते हैं। ये रोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के कारण होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हम अपना बचाव ना करें सेक्स के दौरान, तो हमें संभावना है कि ये रोग हमें लग जाए दूसरे व्यक्ति से जिसको कि ये रोग है।
तो डॉक्टर साहब, ये आम तौर पे इसके कैसे फैलते हैं यौन रोग?
जहाँ तक कि गोनोरिया, सिफिलिस, लिम्फोगोनोरिया, वेनेरियम, हर्पिस का सवाल है, ये तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही होते हैं, क्योंकि इनके कीटाणु जो हैं वो हमारी यौन ग्रंथियों में ही मौजूद होते हैं, जैसे कि सीमन के अंदर, सीमन सेक्रीशंस, वजाइनल सेक्रीशंस।
तो आमतौर से यौन रोग के क्या लक्षण होते हैं?
सबसे मुख्य लक्षण यौन रोगों का है बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, या पेशाब के रास्ते कोई जख्म हो जाना जो कि ठीक ना हो, पेशाब के रास्ते मवाद आना या सूजन आ जाना पेशाब के रास्ते में, और या फिर कुछ छाले टाइप हो जाना या जांग के अंदर मोटी सी गांठ हो जाना एक तरफ या दोनों तरफ। तो ये मुख्य लक्षण है यौन रोगों के।
और क्या महिलाओं में और पुरुषों में लक्षण एक जैसे होते हैं?
महिलाओं में और पुरुषों में लक्षणों का ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि मेल में ज़्यादा कॉमन होते हैं, अदरवाइज दोनों में ज़्यादा लक्षणों में कोई खास फर्क नहीं है।
हमने सुना है जैसे महिलाओं में अगर यौन रोग है तो उसमें महिलाओं में लक्षण कम दिखते हैं, या मान लीजिए कि अगर औरत को पता करना है कि मुझे यौन रोग हो गया है तो किस बात पे ध्यान दे?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे गनोरिया है, इससे हो सकता है महिला के अंदर कोई भी तकलीफ ना हो तब भी उसके अंदर इन्फेक्शन हो, और पुरुष को होने के बाद उसके पेशाब में जलन शुरू हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सिम्टम हो तभी हम कह सकते हैं कि किसी को यौन रोग है, बगैर सिम्टम के भी यौन रोग हो सकता है, कीटाणु मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए सेक्स के दौरान निरोध का इस्तेमाल करना जरूरी है।
अगला मेरा सवाल ये है कि कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि STI या यौन रोग जो है वो छुआछूत से फैलता है या इस तरह की बीमारी है, या फिर जानलेवा है यौन रोग सारे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सबसे पहली बात तो यह है कि यौन रोग सिर्फ यौन से ही फैलते हैं और छुआछूत से बीमारी नहीं फैलती। दूसरी बात यह है कि इनका इलाज संभव है, इलाज के लिए सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे वो क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे क्वालिफाइड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, और हर सरकारी सेंटर पर दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध हैं दिल्ली के अंदर।
आपकी राय में क्या पुरुष महिला, मतलब अगर पुरुष को है STI तो दोनों दंपत्ति को करवाना चाहिए, तो इसको आप कैसे, इसको काउंसलिंग के जरिए होता है क्या?
ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर फैमिली में अगर हस्बैंड को ये तकलीफ कोई है तो पार्टनर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वाइफ को सिम्टम नहीं भी हैं तो भी उसका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यौन रोगों के अंदर कोई लक्षण आए तभी उसका इलाज किया जाए, अगर लक्षण नहीं भी हैं तो भी पार्टनर ट्रीटमेंट देने में कोई बुराई नहीं है, कीटाणु शुरू के स्टेज में ही नष्ट किए जा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आने का और हमें ये सब जानकारी देने का।
और दोस्तों, काम की बात में आज हम चर्चा करेंगे एसटीआई रोगों यानी कि यौन संचरित संक्रमणों के बारे में।
दोस्तों, जैसा कि हमारे पिछले सेगमेंट में डॉक्टर ए के गुप्ता ने बताया, यौन संक्रमित रोगों का इलाज संभव है और ये पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तो इसीलिए जरूरी है जल्द से जल्द इलाज कराना।
इलाज न कराने के परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं।
कई दशाओं में एसटीआई महिलाओं में बांझपन या फिर कैंसर जैसी बीमारी की वजह बन सकता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जल्द से जल्द उपचार न कराना एचआईवी को निमंत्रण देने के बराबर है,
इसलिए जरूरी है कि एसटीआई के उपचार के दौरान अपने रक्त की जाँच भी अवश्य करवाएं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कहीं कोई यौन संक्रमण आपके एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह तो नहीं बन चुका है।
और दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई संक्रमण है तो ऐसे में किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं, और ऐसी दशा में स्त्री और पुरुष तब तक संभोग ना करें जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं।
और हाँ, संभोग के दौरान हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें ताकि संक्रमण का खतरा टला रहे।
तो दोस्तों, ये थी आज की काम की बात। अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर एसएमएस कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782 23। और दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपकी चिट्ठी का। दोस्तों, चिट्ठी से पहले हम शामिल करना चाहेंगे अपने एक श्रोता का सवाल, जो पूछना चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक के एटीएम कार्ड से ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन करवाया जा सकता है या नहीं।
तो हम आपको बता दें कि आप यकीनन बैंक के एटीएम कार्ड से रेलवे रिजर्वेशन करा सकते हैं।
तो अंजलि, कौन है आज के भाग्यशाली विजेता?
नरेन, हमारे आज के विजेता हैं पूर्वी विनोद नगर के दीपक सिंह रावत। नरेन ये लिखते हैं कि मैं आपके माध्यम से अपनी आप बीती बयान करना चाहता हूँ। ये बात मार्च 2008 की है, जब मैं गढ़वाल से दिल्ली सीआरपीएफ में भर्ती के लिए आ रहा था। रास्ते में ही कुछ लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की। उन लड़कों ने मेरी किताबें फाड़ दी और मुझसे पैसे भी छीन लिए। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। अगली सुबह मुझे 8 बजे रिपोर्टिंग करनी थी। रोते बिलखते मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। उस समय रात के 2 बजे थे। दिल्ली की ट्रेन सुबह 6 बजे की थी, इसलिए मैं स्टेशन से वापस आ गया। लेकिन रास्ते में कुछ बदमाश मिले जो मेरा सामान मुझसे छीनने लगे। मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है। शायद उनको मेरी परेशानी पर दया आ गई, उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं बहुत परेशान था, मैंने खाना तक नहीं खाया था। अचानक ही दिल्ली की एक रोडवेज बस आई। मैंने बस कंडक्टर से कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। मुझे रोता देख उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मुझसे रोने का कारण पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे टिकट के पैसे भी नहीं लिए। बस में बैठे सभी लोगों ने 200 रुपये मिलाकर मुझे दिए। तब कहीं जाकर मैंने खाना खाया। मेरे पास अब 450 रुपये हो गए थे। फिर मैं सुबह 7:30 बजे कैंप पहुंच गया और टेस्ट देकर पास भी हो गया। अब मैं दिल्ली में अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। यही थी मेरी आप बीती।
दीपक सिंह रावत जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक सुंदर सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, दीपक जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
और चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना,
अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना,
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
और दोस्तों अब बारी है आज के संदेशों को सुनने की।
जी हाँ, वही संदेश जिन्हें भेजा है हमारे प्रवासी श्रोताओं ने अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए।
तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं आपके संदेश।
जुड़े 34 कदम नगर पूर्व न्यू दिल्ली ग्राम डोंट पोस्ट ऑफिस डोंट पट्टी डोंडा छू जिला पूरे घर उत्तरांचल। मैं अपने पिताजी को मैसेज देना चाहता हूँ कि पिताजी नमस्कार, मैं ठीक हूँ और आप कुशल जाने के लिए हेतु भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो कुशल रहे।
मैं ये संदेश ग्राम एंदोली में अपनी नानी को भेज रहा हूँ। नानी, हमारे पेपर 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं, हम गर्मी की छुट्टियों में गांव आएंगे, धन्यवाद।
मेरा नाम कविता पुंडीर है, मैं ग्राम छोटा शूटा में रहती हूँ। मैं अपने मामा जी को संदेश देना चाहती हूँ जो दिल्ली कैंट में रहते हैं, उनका नाम आनंद सिंह रावत है। मैं उनको यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो गाँव में किसी की परवाह ना करें। हम अपने नानी गाँव गए थे जहाँ का नाम चोपड़ियाली है, वहाँ हमने बहुत से काम भी किए और अपने नाना की देखभाल भी की। मैं आपको यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप मेले में घर आएं और हमारे लिए बहुत सी चीज़ें लेके आएं।
मेरा नाम अनिल च, मैं पौड़ गढ़वाला रहने वाला हूँ। मेरा गाँव नाम गुरफल चा और मैं रेडियो द्वारा अपर माँ पापा थे रहबार देना छूँ। मेरी माँ का नाम नंदी च और पापा का नाम गोविंद, यो गुरफल में रहनी। माँ मेरी चिंता नहीं कह रही, मैं ठीक ठाक छूँ और माँ अपर तबीयत ख्याल रख, जत काम हुए सकलू उतगी कर और माँ मिथे तेर बहुत यादान पर के करण, माँ सदन भी हम तेर समय नहीं रह सकदा, नौकर भी करणी माँ।
हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, तो दुआओं का है घर मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा।
तो ये थे आज के संदेश, और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो अपना नाम और पता हमें SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों प्रवास से जुड़ी छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके और हमारे प्रवासी दोस्तों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए, और अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी आप हमें चिट्ठियों के जरिए बता सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ भड़ज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें प्रवास से जुड़े अपने अनुभव के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।